मजलिस क्या होती थी कि हजरत गोया अपना दिल निकाल के बाहर रख देते थे और एक पुरनूर मजलिस, हजरत की बातें मिसालों के अल्लाह ताला ने बादशाह बनाया था और हजरत के मशाइख ये बात फरमाते थे कि हजरत ने अपने शेख हजरत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो जमाना गुजारा था तकरीबन 16-17 बरस का जमाना और वो भी दिनों रात थी और वो हजरत के बहुत मुजाहदात का जमाना था, यानी जिस्मानी मुजाहदे का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हजरत फरमाते हैं कि वहां पर एक तालाब था, कोई गुसल खाना नहीं था, कोई बैतुल खला नहीं था, यानी कोई वॉशरूम नहीं, कोई बाथरूम नहीं। इस्तिंजा करना है तो खेतों में जाओ, तालाब से वजू वगैरह करो और गुस्ल की हाजत हो, सर्दी का जमाना है तो उसी तालाब में नहाओ। फरमाते इतना ठंडा पानी होता था कि जिस वक्त गोता लगाते थे तो एक लम्हे को ऐसा होता था कि है नहीं, इतना ठंडा पानी होता था। और फिर जोंके अलग, फरमाते नहाते भी जाओ और अपने आप को जोंकों से भी बचाओ। ये तो जाहिरी मुजाहदात तक है और बातनी मुजाहदात में हासिदीन मोतरिजीन वो ये कि हजरत शेख की खिदमत में रहते थे, हालांकि उस जमाने की बहुत बड़ी डिग्री थी हजरत के पास हिकमत की, हकीम थे। हकीम मोहम्मद साईद मरहूम के पास जो डिग्री थी वही डिग्री हजरत के पास थी, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में शेख के साथ वक्त गुजारा और हकीम बनने के बाद हजरत ने इल्म पढ़ा। तो मोतरिजीन बड़े एतराजात करते थे, हासिदीन होते थे, क्योंकि हजरत वाला मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत से बड़ी मोहब्बत करते थे, इस पर लोगों को एतराज था। अगर एक अल्लाह वाला मोहब्बत फरमा रहा है तो बात ये होगी कि वो भी तो मोहब्बत कर रहा होगा। सीधे बैठो, सीधे ऐसे दो दानों बैठो, दो दानों बैठा। आखिर अगर वो अल्लाह वाला कोई मोहब्बत कर रहा है तो जानी बिल्ला उससे दिल में होगा कि मोहब्बत को इख्तियार कीजिए थोड़ी। और जाहिर बात है एक मुरीद इतना फिदा हो तो शेख क्यों ना मोहब्बत फरमाएगा। अब देखिए ना, एक बात है कि एक शख्स रोजाना शेख के पास आता है और एक कभी कभार आता है। एक आदमी रोजाना आपसे मिले कोई गरज नहीं है और एक आदमी कभी कभार मिले, तो आपकी नजर में उन दोनों के मामले में फर्क होगा कि नहीं होगा? दोनों की वकात अलग अलग होगी, एक है कभी कभार, एक है सदाबहार। सर्दी गर्मी धूप छांव कुछ भी है वो अपना रजा। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह को मुजाहदात में एक मुजाहदा ये भी होता था कि रात को 12-1 बजे हजरत को अपने शेख की खिदमत करके जब बाहर आते हैं तो हजरत का अपना चारपाई, अपनी बिस्तर, अपना तकिया, अपनी चादर सब कुछ, वो चारपाई किसी के पास, तकिया किसी के पास, बिस्तर किसी के पास। तो अब सोचे रात बंद थका हुआ और ये हो, हम लोग हो तो हो। एक बुजुर्ग का वाकया याद आया, अखलाक क्या चीज होती है। तशरीफ फरमा थे, दामन फैला हुआ था, एक बिल्ली उस पर आके बैठ गई। नमाज का वक्त हुआ, वो बिल्ली सो रही है, हम तो बैठने भी ना थे, कुजा ये कि वो सो गई। अब वो नमाज का वक्त हो तो क्या किया कि उन बुजुर्ग ने वहां से दामन को काटा और खड़े हो गए। क्या हाल है अखलाक आलिया का कि जिसकी शफकत जानवरों पर ऐसी हो, इंसानों के साथ क्या मामला होगा। जब वापस आए तो बिल्ली जा चुकी थी, दामन उठाया, उसको जोड़ा और टांगे मार ली। ऐसे फानी लोग थे जिसको अल्लाह ताला ने जिससे दीन का काम लेना, तो उस शख्स के अखलाक आलिया का क्या हाल कि रात 12 बजे थके हुए निकले, दिन भर की थकावट और चूर, जवानी का जमाना है, नींद टूट के आती है। उस पर हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह किसी से कुछ नहीं फरमाते थे, चुप करके अपना बस एक जानिब जाके लेट गए। हालांकि चारपाई अपनी जाती, बिस्तर, तकिया, चादर, लेकिन इसको कहते हैं अखलाक। अखलाक आलिया। और मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दीन का काम करने के लिए अखलाक आलिया चाहिए। जिसके अंदर जिसके अखलाक में बुलंदी ना होगी, उससे दीन का काम नहीं होगा। इस्लाही खतूत आते हैं, एक इमाम साहब ने लिखा के जब मैं लोग मुझे सलाम नहीं करते मुख्तदी तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो जवाब दिया गया कि सुन्नत तरीका तो यह है कि सलाम में पहल करें, आपको मुख्तदी के सलाम का इंतजार क्यों है। इमाम आप हैं तो सलाम करने में भी इमाम होने चाहिए। आप सलाम करेंगे फिर वो भी सलाम करेंगे। अब सलाम की सुन्नत है वो मतरूक हो रही है, लोग सलाम नहीं करते, तो आप क्या शिकवा करते। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह से एक इमाम ने एक यही बात की कि आजकल मुख्तदी मोहब्बत नहीं करते। तो हजरत ने फरमाया आप मोहब्बत करते हैं उनसे। कहने गए हजरत जब वो मोहब्बत नहीं करते तो मैं कैसे करूं। आलिम थे हजरत वाला रहमतुल्लाह ने फरमाया, हदीस शरीफ में आता है कि ला खैरा फीमन ला यालफ वला यूलफ, ऐसे शख्स में खैर नहीं है कि जो ना किसी से मोहब्बत करे और ना उससे कोई मोहब्बत करे। यालफ, ना वो किसी से मोहब्बत करे, यूलफ और ना उससे कोई मोहब्बत करे। ला यालफ वला यूलफ। तो फरमाए कि यानी खैर उसमें नहीं है जो ना किसी से मोहब्बत करे और ना उससे कोई मोहब्बत करे। हजरत फरमाए इस हदीस शरीफ में तो यालफ पहले है, यानी तुम मोहब्बत करो, मोहब्बत दो, मोहब्बत लो, बस खामोश हो गए। फिर मैं आप मोहब्बत करते वो नहीं करते तो मैं कैसे करूं। फिर मैं देख लो, मोहब्बत करोगे मोहब्बत मिलेगी, और अगर इस इंतजार में रहे कि हमें सलाम करे हमें मोहब्बत दे, कभी ना होगी। आखिर वो क्या चीज थी कि मुशरिकीन और कुफार مکہ شریف اور عرب کے چٹیل پہاڑوں میں رہنے والے جن کے دل سخت اور دل کی سختی کا یہ عالم ہو کہ زندہ بچیوں کو قبر کے اندر زندہ درگور کر دینا، دفن کر دینا، جن کی سختی کا یہ عالم ہو، دل کتنا سخت، آخر کس چیز نے ان کے اس پتھر دل کو موم کیا؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق عالیہ تھے، وہ اخلاق تھے، وہ محبتیں تھیں کہ جنہوں نے ان پتھر دلوں کو موم کر دیا، وہ جن کے ہاں رونے کا تصور نہیں تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نوازا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کی آگ کا جب ان کے دل پر اثر ہوا، دل نرم ہوا، اب وہ زارو قطار روتے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونے والے بن گئے. ان کے دل کی نرمی کا کیا حال ہوا کہ وہ حضرات جو کہ کانوں پر جن کے جونیں رینگتی تھی، ایسے سخت دل، اب عالم یہ ہے کہ ایک ایک چوٹی کی بھی، وہ ایک ایک جانور کی بھی فکر کر رہے ہیں. اخلاق عالیہ تھے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر کروڑوں درود و سلام، جزائے خیر دے اللہ تعالی آپ کو کہ آپ کی شفقت اور رحمت. اخلاق عالیہ کا ایک منظر آپ تصور کریں، یعنی تصور کی بات ہے واقعی، اللہ اکبر. اور میں نے اس کو سوچا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص کو وقت دیا، اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں، آپ اسی جگہ 3 دن تشریف فرما رہے. یہ مشہور واقعہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور بالکل صحیح واقعہ ہے کہ اسی جگہ پر آپ 3 دن انتظار فرماتے رہے، اور جب وہ کسی ضرورت سے گزرا تو اس کو یاد آیا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہ منایا. میں نے میں نے غور کیا، 3 دن انتظار، اوفو، ہم سے تو 3 منٹ نہیں ہوتا، اگلے کو ہم 3 گھنٹے انتظار کرا دیں گے، لیکن خود ہم 3 منٹ انتظار نہیں کر سکتے، بلکہ چاہیں گے 3 گھنٹے پہلے ہی وہ ہمارا کام کر دے. لیکن اخلاق نبوت کا معیار دیکھیے، بلندی دیکھیے، رفتیں دیکھیے، کہ اس نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کی بلندی، اف اللہ اکبر. میں نے سوچا اس پر، غور کیا کہ انتظار نہیں جناب. تو اس اخلاقی بلندی نے، اس اخلاقی معیار نے ان پتھر دلوں کا، سوچے، جن کے شراب، جن کے زنا، جن کے ڈاکہ، جن کے قتل، کوئی بات ہی نہیں. آپ سوچے، نو مولود بچی کو، معصوم پیاری سی وہ چھوٹی سی ایک بچہ ہوتا ہے، اور وہ جو بچی ہوتی ہے کتنا اس میں ایک کشش ہوتی ہے کہ پتھر دل بھی اس کو دیکھ کر پگھل جائے. لیکن ان کی قلب کی سختی کا، قساوت کا، سنگ دلی کا یہ عالم کہ اس کو زندہ دفن کر رہے ہیں. کیسے ظالم لوگ، ظلم کی بھی کیا انتہا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قلب کی آگ، وہ اخلاق، وہ نور نبوت، وہ اخلاق نبوت، وہ کردار نبوت، وہ رفتار، وہ گفتار نبوت صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ان کے دل کی دنیا بدل دی. اب ایک ایک چیوٹی کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں، اگر ایک کتا بھی پیاسا بھوکا مر گیا، عمر سے حساب ہوگا. اور اللہ تعالی کی عظمت کا کس کیا مقام ہے کہ فرما رہے ہیں کہ تنکا پکڑ کر رو رہے ہیں، کاش میں یہ تنکا ہوتا جس سے کوئی حساب نہ ہوتا. حضرت عمر خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرے, رونے لگے. صحابہ ساتھی ساتھ میں تو پوچھا, حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا, دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں شتربانی کرتا تھا, اونٹوں کو چرایا کرتا تھا, اور میرا باپ مجھے مارتا تھا. مجھے آج یہ خیال آیا کہ ایک زمانے میں میں شتربانی کرتا تھا, اونٹ چرانے والا جس کو تہذیب اور سلیقہ اور تمیز نہیں, آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں کہ شتربان حکمران ہے. 22.5 لاکھ مربع میل اسکوائر کلومیٹر, یعنی یوں لمبائی نہیں, 22.5 لاکھ مربع میل اسکوائر فٹ جیسے ہوتے نا کہ چاروں طرف سے اسکوائر, سوچیں آپ کیا اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی, شان کا یہ عالم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کا یہ حال, خلیفہ خسر کیا کیا نسبتیں حاصل کہ بیت المقدس پر. اب صحابہ نے جب گئے تو وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں, تم اپنے حکمران کو بلا لو, ہمارے پاس نشانی آئے کہ بیت المقدس فتح ہوگا, ہم اسے بلا لو, ہم دیکھیں گے. اب عالم یہ ہے کہ غلام کے ساتھ چلے, خچر پر سوار, گدھے پر سوار, معاملہ طے کر لیا, ایک منزل تم بیٹھو گے, ایک منزل میں بیٹھوں گا. یہ حال ہے خلیفہ وقت کا. غلام نے کہا, فرمایا نہیں بھائی, دیکھو مساوات کے ساتھ, یہ ہوا ایک منزل غلام, ایک منزل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اب جب پہنچے قریب تو غلام کی باری, اب غلام نے کہا کہ آقا آپ تشریف رکھیں, میں اپنی باری. فرمایا نہیں, تمہاری باری ہے, تم بیٹھو, میں ایسے ہی جاؤں گا. کہا لباس بدل لیں, فرمایا لباس سے کچھ نہیں ہوتا, لباس بھی نہیں بدلنے پر راضی ہوئے. اب جب وہاں پہنچے عیسائی آئے, اب آ کے انہوں نے پوچھا کہ غلام گدھے پر سوار ہے, امیر المومنین پیدل چل رہا ہے. اچھا, کیا یہ نشانی ہو گئی, کیا پیوند گننے, پیوند گننا شروع کیے, ایک پیوند کم نکلا, کہا یہ خلیفہ یہ نہیں ہے. کہا کیسے گنے, کہا گنے دوبارہ گنو, دوبارہ گنو تو بغل اٹھائی, بازو اٹھائے, کہا یہ بھی گنا تھا, کہا اس کو بھول گئے تھے. اب جو گنے پورے پیوند نکلے, غالباً 17 پیوند تھے. اب تصور کریں کیا حال ہے, سادگی کیسی, حکمرانی کیسی, اور طرز حیات اور طرز معاشرت کیسا. انہوں نے کہا لو بس, ہمیں اسی کا انتظار تھا, یہ لو بھائی کنجیاں. سبحان اللہ, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کا اثر, کائنات روشن ہو گئی, ایسی روشنی کہ قیامت تک نہ بجھ سکے گی, ایسی شمع رسالت, ایسی روشن کہ قیامت تک نہ بجھ سکے گی. بجھانے والے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے, کراچی میں تو کچھ اور کہتے ہیں نا کہ کوئی اور کا بھی زور لگا لے, ایڑی چوٹی کا زور لگا لے, نہ بجھا سکے ہیں, نہ بجھا سکے, نہ بجھا سکتے ہیں اور نہ بجھا سکیں گے. کیونکہ جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ دین قیامت تک رہے گا, قرآن پاک قیامت رہیں گے, اللہ تعالی نے علماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث فرمایا, انبیاء کا وارث فرمایا, وہ بھی قیامت تک رہیں گے. سب سلسلہ چلتا ہے, کچھ بھی ہوتا رہے, کیا کچھ ہوتا رہے, طوفان آتے رہے یا اس قسم کے طوفان آتے رہے, قتل ہوتا رہے, ظلم کی انتہا ہو جائے. بغداد کا جب واقعہ ہوا, تاتاریوں نے تاراج کیا خلافت بغداد کو, اتنا خون بہایا کہ سمندر دریا جو ہے وہ لال ہو گیا, اور کتابوں کو اتنا لاکھوں لاکھوں کتابیں دریا برد کر دی کہ پانی سیاہ ہو گیا, کئی روز تک سیاہ رہا. اتنا یعنی بہاؤ کے باوجود, لیکن الحمدللہ علم کا خزانہ آج بھی موجود ہے. دنیا کے کتنے حصے رشین بلاک پہ تقریباً 100 سال کے قریب حکومت کی, مسلمانوں کو مٹانے کی ہوگی سب کچھ, اللہ تعالی نے اسی کو توڑ دیا. جب توڑا تو اندر سے مسلمان ہی نکل رہے, وہی قرآن پاک, اذان ان کی وہی ہے, اقامت ان کی وہی ہے, مسلمانوں کے نام وہی ہیں, اور دل میں ایمان. سبحان اللہ, یہ ایمان کی برکت ہے. اذا دخل قلبا لا یخرج منہ ابدا, جب ایک دفعہ دل میں داخل ہو جاتا ہے پھر کبھی نہیں نکلتا. یہ ایمان ایسی چیز ہے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اخلاق عالیہ, جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے مقتبس تھے, کہ رات کو تشریف لا رہے, جب رات کو تشریف لائے تو دیکھا جناب چارپائی کسی پاس, فلا کسی پاس, فلا کسی کے پاس, اور جب کوئی بات کہے تو یہ سوچ لیا کرے اگر میں ہوتا تو کیا حال ہوتا, میں تو اس کو یوں کرتا. تمہیں سمجھا کیا ہے مجھے, میری چیز ہے. اور اگر کوئی صوفی لیٹ جاتا تو کہتے ہیں صوفی شرم نہیں آتی, داڑھی رکھ کے حرکت کی ہے تم نے. تو یہ ہے اخلاقی بلندی, اور دین کے کام کرنے کے لیے اخلاقی بلندی چاہیے, تحمل اور برداشت چاہیے, اس کے بغیر کام ہو نہیں سکتا. تو حضرت نے ایسے مجاہدات سے زندگی گزاری, لہذا حضرت کے بڑوں نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہے, جو مقام عطا فرمایا ہے, یہ اس مجاہدے کی برکت ہے. اور اس مجاہدے میں بھی ایک بات بھی تھی, اللہ حضرت فرماتے تھے کہ مجھے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ابھی تو شیخ زندہ ہے, شیخ کے دسترخوان پہ مزے اڑا رہے ہو, آگ بند ہوگی نا پھر دیکھتے ہیں, پھر یہ مزے ملتے ہیں, ملنے ملتے ہیں. اور فرماتے ایک جملہ بھی کستے تھے مالٹا چوسی مرغی کھائی شیخ کو چھوڑ کے کاہے کو جائی. کہ جہاں بھائی مالٹا اور مرغیاں مل رہی ہیں کیوں جائے گا چھوڑ کے. فرماتے میں سنتا تھا دل پہ چوٹ لگتی تھی, لیکن الحمدللہ میں نے کہا میں شیخ کا در نہیں چھوڑوں گا. اب ان تکلیفوں میں ہو, اگر کوئی خانقاہ میں رہنے آ جائے اور اس کو ذرا بستر تھوڑا ایسا نہ ملے, وہ تو اگر چلو بھائی گھر چلو. کیا کیا کیسی عجیب, لیکن اپنے کو کیسا مٹایا. حضرت یہ بات فرماتے تھے, کبھی کبھی تو تذکرہ ایسے ہو جاتا, روتے تھے. فرماتے دیکھو اللہ تعالی نے کتنا کرم کیا اس فقیر کے دسترخوان پر, درجنوں درجنوں سینکڑوں سینکڑوں, بلکہ ایسا بھی منظر دیکھا ہزاروں ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں. یہ تو یہ اخلاقی بلندی اس صحبتوں سے حاصل ہوتی. تو حضرت کی بات سنا رہا تھا, حضرت کی بات عجیب ہوتی تھی. فرماتے ہیں کہ دیکھو انگریزوں کا جو سال شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے جنوری. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان کو فرمایا اولئک کل انعامی بل ہم اول, یہ مثل جانور کے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. फरमाया जानवर है, जानवरों को साल शुरू हो रहा है जानवरी से। हजरत हंस के फरमाते हैं जानवरी। तो जानवर वाले काम करते हैं, जी न्यू ईयर नाइट आई शराब पियो फायरिंगे करो बस। यानी थोड़ा सा सोचे भाई इससे क्या हुआ, ये एंजॉय किया। एंजॉय क्या किया, वही एंजॉय की हकीकत तो ये थी, आयश की हकीकत ये थी कि दिल को सुकून मिलता। क्या सुकून मिला, पैसा बर्बाद किया, वक्त बर्बाद किया, शोर मचाया, अपनी तबीयत खराब हुई, मिला कुछ भी। इसका नाम है खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह। फरमाया मुहर्रम, अल्लाह ताला ने मुसलमान को मोहतरम बनाया। वलकद करमना बनी आदम, एक साइंसदान गुजरा ना डार्विन, तो डार्विन ने अपनी थ्योरी पेश की खुदा के वजूद के इंकार के साथ, थ्योरी पेश की कि इंसान बंदर की औलाद था। तो बंदर था इंसान, तो वो जो बंदर, एक बंदर को खारिश हुई और खारिश भी मखसूस मकाम पर। अब वो खारिश कर रहा था, पत्थर से रगड़ रहा था, खारिश तो गई नहीं, दुम झड़ गई। ये उसकी थ्योरी है। और फिर उसके बाद खारिश बेचैनी तो दौड़ने लगा था, दौड़ते दौड़ते जो है वो बस दो पांव पे दौड़ने लगा, इंसान बन गया। ये साइंसदान हकीम मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि हजरत ये थ्योरी पेश की है, आप जवाब दें। कहते हैं वो, फिर उसने कहा हम बंदर की औलाद है। अल्लाह अकबर, उलमा के उलूम क्या होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का क्या हाल होता है। हजरत ने अजीब बात फरमाई, फरमाया भाई इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। हजरत हम इंसान की औलाद क्यों जरूरत नहीं है। फरमाया भाई देखो बात यह है, हर शख्स को हक हासिल है कि वो अपना नसबनामा पेश करे कि मेरे बाप दादा फला है, हक है ना। अगर एक शख्स कह रहा है कि मैं बंदर की औलाद हूं तो आप तस्लीम कर ले, इसमें झगड़े की जरूरत ही क्या। बल्कि अगर वो कहे कि मैं कुत्ते की औलाद हूं तो ठीक है जनाब, क्या हम तस्लीम करेंगे। आप खिंजीर की औलाद है कोई कहे, ठीक है जनाब आप हैं। हमें अल्लाह ने फरमाया बनी आदम, या बनी आदम, हम आदम अलैहि सलाम नबी की औलाद, इंसान की औलाद है, आप है ठीक है। अगर कोई कहे मैं शेर का बच्चा हूं, हम उससे नहीं पूछेंगे कि शेर घर आया था या माँ जंगल गई थी, हम नहीं पूछेंगे उससे तो शेर का बच्चा कैसे बना, नहीं पूछेंगे भाई हम। ठीक है आप तू है तू है तू है, हम नहीं पूछ रहे सवाल। मैंने पूछा, मैं तो यही कह रहा हूं ना, नहीं पूछेंगे। दादा जो आदमी ऐसा कहे उसको आप बता दे कि हम आपसे नहीं पूछेंगे कि शेर घर आया था या माँ जंगल गई थी, हम नहीं पूछेंगे। उससे कह दे भाई हम आपसे नहीं पूछ रहे, आपका ये है, आपका हक है, आप अपना नसब पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसान की औलाद है, आदम अलैहिस्सलाम जिसको अल्लाह ताला, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से अपने हाथ से पैदा फरमाया और हमें उनसे पैदा फरमाया और फिर एक शरफ दिया, एक करम दिया, करम ना, एक एजाज दिया, इज्जत दी। हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, वो है ठीक है। और मजे की बात यह है कि आजकल के साइंसदान उसी को अहमक बोलते हैं, क्या बेवकूफ है बंदर का बच्चा। आजकल के साइंसदान उसकी थ्योरी को रद्द कर रहे हैं, पागल नस्वार नहीं मिला था थ्योरी लिख डाली। हमें झगड़े की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही झगड़ रहे। हमारा काम हक पे नजर रखे बस। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसलमान को मोहतरम बनाया। मुसलमान का साल शुरू होता है मुहर्रम से और मुहर्रम के माने मोहतरम के, और मुहर्रम की जो फजीलत है याद रखने की बात है कि मुहर्रम की जो फजीलत है वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि हमारी आंख का तारा, हमारे आंख सरताज, हमारे आंखों की ठंडक, जिनसे मोहब्बत हमारा ईमान। लेकिन मुहर्रम की फजीलत हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से नहीं है। मुहर्रम का साल जो शुरू हुआ वो तो बहुत पहले से हुआ है ना भाई, हिजरी साल के आगाज वो तो मुहर्रम हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पहले से है। और 10 मुहर्रम की फजीलत तो पुरानी है, यहाँ तक के फिरौन के से जो नजात मिली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो 10 मुहर्रम थी। इसीलिए यहूदी रोजा रखते थे और रमजान से पहले ये रोजा मुसलमान भी रखते थे, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है ये रोजा, मुहर्रम का रोजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्बत्ता ये फरमाया कि खालिफुल मुश्रिकीन का मुश्रिकीना मुश्रिकीन की मुखालफत करो, तुम सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा मत रखो बल्कि 10 के साथ 9 का या 10 के साथ 11 का रोजा रखो। और ये रोजा फर्ज नहीं है, मुस्तहब है, बायस अजर है, बायस सवाब है, फजीलत वाला रोजा है। लेकिन अकेले ना रखे, इसके साथ 9 का रखे या इसके साथ 11 का रखे, दो रोजे रखे। तो मुहर्रम की फजीलत पहले से है। और अजीब बात है, मुहर्रम का आगाज हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से। और मसला याद रखने की जरूरत है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल थे। हजरत हसन रजी अल्लाह हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तआला ने वो शर्फ अता फरमाया कि सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, वो दर्जा अता फरमाया कि जन्नत के जवानों के शबाब के अहले शबाब के सरदार हैं वो, ये दोनों बुजुर्ग। लेकिन अल्लाह ताला ने जो शरफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला को अता फरमाया, जो दर्जा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का है, बहरहाल वो सहाबा में इनका दर्जा ज्यादा है। और याद रखने की बात है कि हजरत ये जो वाकया करबला है बहुत ही जालिमाना वाकया है, और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की वो शहादत बहुत दर्दनाक वाकया है, जुल्म है, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया, मुनाफकत की गई, और आपका जो मामला रहा ये बिल्कुल हक है और आपकी शहादत बिल्कुल बरहक है। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की उस शहादत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कितने प्यारे नवासे के साथ किस तरह मुनाफिकाना और धोखे का अमल हुआ, और आप पर हक का गलबा था कि मैं हक पर अमल करूंगा, उस हक की खातिर से आपने जामे शहादत नोश फरमाया। और वहां के लोगों ने सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, इनके वालिद मोहतरम खलीफा चाहरुम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन उनके साथ भी धोखा किया था। और बाद साहबा ने जिनमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु है, उन्होंने भी हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये बात अर्ज की थी। लेकिन मुसलमानों की खातिर से, उम्मत की खैरखाई की खातिर से आप फिर भी तशरीफ ले गए और ये जालिमाना वाकया पेश आया। अरे इसलिए याद रखने की जरूरत है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के ये वाकया बिल्कुल हक है और आप हक पर थे। लेकिन इस वाकये की वजह से हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला पर की तनकीज करना, उनको कुछ बुरा भला कहना ये दुरुस्त नहीं है। दोनों सहाबा हैं, दोनों की अजमतें हैं, और दोनों की अजमत, दोनों की मोहब्बत ये हमारे ईमान में से। किसी एक सहाबी के बारे में भी हमारे दिल में अगर मैल आया, गुबार आया, तो ये हमारे लिए खतरनाक बात है, हमारे ईमान के लिए बहुत खतरा है। और ईमान जान से ज्यादा कीमती है, ईमान जान से ज्यादा कीमती है, जान खत्म हो जाएगी, ईमान बाकी रहेगा। इसलिए ईमान जान से ज्यादा कीमती है। हजरत और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना के इस तरह की बातें करना जिससे उनकी तनकीस आए और उनके इस फैसले को गलत समझना, ये भी दुरुस्त नहीं है। ये वो मसलक है और ये वो बातें हैं जो कि जमहूर अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और उनका नजरिया और उनका मौकफ है कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला वो इस चीज से बरी जिम्मा है और सहाबी हैं, उनकी अजमत उनकी मोहब्बत हमारा ईमान है। और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का ये वाकया जो हक पर मबनी है, शहादत का ये वाकया बहुत जालिमाना है। अब मुसलमान को इस मुहर्रम में क्या करना चाहिए? तो मुसलमान को मुहर्रम में वही करना चाहिए जो गैर मुहर्रम में करना चाहिए। गैर मुहर्रम में क्या करना है? शरीयत पर अमल करना है, सुन्नत पर अमल करना है, गुनाहों से बचना है। मुहर्रम में क्या करना है? शरीयत पर अमल करना है, सुन्नत पर अमल करना है, गुनाहों से बचना है। अब इस मुहर्रम को गुजारने के लिए ये तरीका है सबील, ये सबील लगाना कि जी पानी पिलाएंगे। तो याद रखिएगा, पानी पिलाना ये बहुत बड़ी इबादत है, अजीमुशान इबादत है। लेकिन क्या इबादत सब 10 रोज के लिए? और मजे की बात यह कि सबील लगाने वाले ये हजरात, चाहे जो हमारे में से हो चाहे गैरों में से हो, हजरत गालबन याद पड़ते कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रोजे से थे, ऐसे ही है ना, रोजे से थे। 10 मुहर्रम का रोजा है, उसकी फजीलत है और वो पहले से चली आ रही है। अजीब बात है, सबील लगाने वाले सबको पानी पिला रहे हैं, जिस दिन रोजा रखना चाहिए एक फजीलत की बात है, न खुद रोजा रखते हैं न दूसरों को रोजा रखवाते। चलो एक आदमी था वो रोजा नहीं रखते, कोई बात नहीं है, अगर कोई रोजा नहीं रख रहा कोई बात नहीं है। लेकिन ये क्या, जिस हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में सबील लगा रहे के पानी नहीं मिला, तो वो तो रोजे से थे और तू पानी ठूसता है? फिर पानी नहीं, बादाम वाले दूध वाले शरबत पी रहे हैं जनाब, दूध वाले शरबत, उसमें रूह अफ़ज़ा और बादाम डाल के उड़ा रहे हैं। जिनको खाने को नहीं मिला ये हलीमे उड़ा रहे हैं। वाह, अजीब मोहब्बत है कि एक साहब को देखा कि आंसू भी बहा रहे हैं खाए भी जा रहे हैं। कहा आंसू क्यों? कहा खैरियत क्या बात है, आंसू भी बहा रहे हैं खाए भी जा रहे हैं। कहा बात ये कि वो जो मेरा महबूब है ना, वो मेरा महबूब वो मर रहा है, खैरियत भूख से मर रहा है। कहा आप क्यों खा रहे हैं? कहा उसके दफनाने कफनाने के लिए ताकत तो चाहिए, इसलिए खा रहा हूं मैं। ये है हमारी तरीकाकार। कह रहा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की मोहब्बत के वो दावे, लेकिन उनकी शरीयत अपने जमाने में सबसे बड़े आबिद थे वो। लगा आप आबिद और जाहिद मशहूर थे, सखी मशहूर थे, सखावत आपकी जिसको हमारे उर्दू में कहते हैं खत्म थी, आप पर सखावत तमाम थी, आपकी इबादत तमाम, आपका ज़ोहद तमाम, आपका इल्म जो कि आपकी सिफात थी उनमें से एक भी नहीं लेते। बस काली इतनी मोटे खा खा के तोंदे बनाओ, बस दूध वाले शरबत पियो, उस पे भी बादाम डाल के पिस्ते भी, जरा पिस्ते का ना पिस्ता भी डालो और जाफरान भी डालो जनाब, और नारा लगाओ पानी पियो तो याद रखो प्यास इमाम हुसैन की। तो भाई प्यास पानी पीने से नहीं याद रहती, प्यास प्यासा रहने से याद रहती। हाँ भाई, प्यास जो है वो पानी पीने से तो याद नहीं रहेगी, तो प्यास तो चली गई, प्यास ऐसे याद रहती कि खुद भी प्यासे रहते। ये नाम, ये दावा है हम लोगों का मोहब्बत का। मुनाफ़क़त देखी, वो बेचारे भूख प्यास से शहादत का कितना अजीम मर्तबा, आबिद जाहिद इबादत रोजे की हालत में, और यहाँ हम जो ठूसा ठूसी मचा रखी है और बस जी आशिक हुसैन बने हुए। ये मुनाफ़क़त है हमारी। और सबील लगाना कितनी बड़ी इबादत है, सबील पानी पिलाना अजीम शान इबादत है, बल्कि बाज रिवायतों में तो दर्जा आता है जैसे गुलाम आजाद कर दिया, इतनी बड़ी इबादत। तो भाई क्या इबादत सिर्फ 10 दिन के लिए की जाती है? ऐसा इंतजाम करें पूरा साल पानी पिलाए, पूरे साल सबील लगाए। कितने लोग करते ना अपने घरों के बाहर, पहले तो होता था, अब तो नहीं होता, अब तो नहीं पिलाते पानी, पहले पिलाते थे लोग अपने घरों के बाहर टंकी बना देते थे, लो भाई पानी पीते रहो, गधे घोड़े मजदूर सब आ रहे हैं गुजर रहे पानी पी रहे हैं, लगा देते थे। माशाल्लाह कितनी प्यारी चीज है। तो यकीनन ये इबादत नहीं है, तो ऐसी सभी लगाए जो सारे साल की। और खुदा के लिए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ये खेल ना खेले, उनके मर्तबे का ख्याल रखने की जरूरत है कि ये दूध के शरबत और रूह अफजा के शरबत और जनाब पिस्ता बादाम और जाफरान के शरबत और हलीमे खाना और याद उनकी मनाना, ये मुनाफ़क़त से अल्लाह हमें बचाए। मजे की बात थी, रोजा रखे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दस्तरखान अपने घर वालों पर वसी करो, इससे इनकार नहीं है, लेकिन रोजा भी तो रखे ताकि खाने का मजा भी आए। बाज़े हज़रातों का कुछ देखा के तर्ज है हाथ पर कोई धागा काला या दूसरे लाल रंग का बांध देना, या गले में कोई ऐसा बांध लेना। एक कम इल्म तालिब इल्म हूं, मुझे मालूम नहीं ये क्यों बांधते, मुझे नहीं पता। अंगूठी का तो पता है, बाज़े लोग अंगूठी पहनते इसलिए कि उनको बवासीर की बीमारी होती है, तो कहते हैं इससे बवासीर अच्छा हो जाएगा। तो मैं तो उनकी खिदमत तो मैं यह बात अर्ज करता हूं कि छल्ला अगर बांधना है यहां करने का कोई फायदा नहीं है, जहां से खून निकल रहा है वहां बांधो, वहां रोक लगाओ ना, कि उंगली पे पहनने का कोई फायदा नहीं है, जहां से खून निकल रहा है ना वहां लगाओ तो कुछ फायदा भी मिले। बाकी इसकी मुझे वजह मालूम नहीं है कि क्या वजह है, वजह तो मालूम नहीं, इतना पता है मुझे कि ये तरीका हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। चाहे वो बाजू पे बांधना, चाहे वो कलाई पर पहनना, चाहे वो गले में पहनना, ये तरीका मुसलमानों का नहीं है। अगर मुसलमान करते हैं तो इन्होंने हिंदुओं से तरीका सिखाई है, ये हिंदुओं का तरीका है। और मुसलमान की शान ये है कि अपने आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर रखे और इस चीज से बचने की कोशिश करें, इसका कोई वो नहीं है। जैसे एहतजाज में काली पट्टियां बांधते हैं ना, सियाह तहरीक और यौम सियाह, यौम सियाह की क्या जरूरत है, जब मुंह काला है तो यौम सियाह मनाने की क्या जरूरत है। एक चौधरी साहब मुहर्रम के दिन थे, मुहर्रम के दिनों में सफेद कपड़े पहने घूम रहे थे, किसी ने कहा अरे चौधरी साहब क्या हो गया मुहर्रम में सफेद कपड़े पहन के घूम रहे हो, क्या करता काले कपड़े पहनते। उन्होंने कहा छड़ी यार, काले कपड़े की दी की जरूरत है, काले कपड़े की क्या जरूरत है, दिल काला होना चाहिए। कपड़े की क्या जरूरत है, दिल काला हो काफी है, यौमे सियाह मनाने की क्या जरूरत है, मुंह काला होना काफी है। तो मेरे प्यारे अजीजों दोस्तों, चंद मुतफर्रिक बातें थी। मुहर्रम इबादत का महीना है, इबादत का जमाना है, उस इबादत के महीने और इबादत को करें, ये चीजें हैं। और ऐसी इबादत करें जो सारा साल करें, ये नहीं कि सीजनल कोई काम ना करें कि जी सीजन आए ये काम कर लिया, सीजन आए ये काम कर ले, नहीं ऐसा नहीं। अपने सुबह शाम के मामूलात ऐसे बनाए कि मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, शाबान हो, रमजान हो, हज हो, एक जैसा। حجاج حضرات سے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی تم حج پہ جانے سے پہلے حج کی عبادت کی عادت ڈالو, ورنہ حج میں بھی گپے لگاتے رہو گے اور پھر حج کے زمانے میں ایسی عبادت نہ کرو کہ تمہیں آج جیسے قیدی کو بھوک قید خانے سے چھوٹ ملتی ہے تو پاگل بن جاتا ہے, قیدی بھوکوں کی طرح کھاتا ہے نہیں کہتے نا, ایسے مت بنو کہ عبادت کی جا رہے تو کیے جا رہے, ایسی عبادت کرو جو تم اپنے گھر پہ بھی کر سکو, اپنے معمولات کو ایسے بناؤ. ہاں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لو, جیسے قرآن پاک کا معمول ہے, چلو ایک گھر پہ ایک پارا پڑھتے ہو, تین پارے چار پالے ماشاءاللہ, درود شریف پڑھو, طواف کرو, فضیلت کی چیزیں, موقع آیا عمرہ کر لیا, لیکن ایسا مت کرو کہ ایک موقع آیا خوب عبادت, وہ دن گئے عبادت بھی گئی. جیسے رمضان شریف میں مسجد بھرتی ہے, رمضان شریف جاتے ہیں سارے نمازیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, وہ رمضان شریف تو کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ دیکھو میں آج جا رہا ہوں آئندہ سال آؤں گا تم رہنا مسجد میں, شیطان آتا ہے کہتا ہے یار کیا یار اتنی عبادت کر لی تیرا پیٹ خراب ہو جائے گا, چل ملاؤں کے چکر میں پھنس گیا. ایک مہینے میں تو ریسٹ پر گیا ہوا تھا, قید تنہائی میں تھا, بند کیا گیا تھا, چلا آ جائے یار پھر چلے. وہ موتقف جو بےچارے کی تھوڑی سی داڑھی نکلے تھے, شیطان اس کی بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے, کل تیری پرانی معشوقہ آ رہی ہے تجھے عید پہ ایسے دیکھے گی کیسا لگے گا, تو چل ذرا اپ ٹو ڈیٹ بن جا, خالہ زاد بہن بھی آئے گی اور سب جس سے تو شادی کرنا چاہتا تھا کل وہ بھی آئے گی, سوئیاں کھلانا اپنے ہاتھ سے پیالی دینا. تو اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے اور حق عطا فرمائے. محرم ہے, اس کی عبادت ایک اضافی عبادت ہے, وہ کہ 9-10 کو روزہ رکھ لے, یہ ایک چیز ہے. اور ماشاءاللہ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا, حضرت نے اجتماع کا نظم بنا دیا, بہت اچھا موقع ہے, 3 دن وہاں لگا لے, کوئی عذر ہے اگر عذر واقعی ہے تو چلے جائے آ جائے, لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھائے کہ عبادت کا ہے, نیک صحبتوں میں بیٹھنا, دل میں محبت علم, کتنی نعمتیں ملتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اسی بند کر دو جلدی سے, لائٹ بند کر دیتا. اللہم صل یا اللہ مالک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.